देखिए भाई किताब पर मतन देखिए। वला बुद्द फिल मूजिबति मिन वजूदिल मौजूई इम्मा मुहक्ककन फही अल खारिजियतु औ मुकद्दरन फल हकीकियतु औ ज़हनन फज़हनियतु। गुज़श्ता सबक में आपने पढ़ा था कि क़ज़िया मूजिबा में वजूद मौजू जरूरी है। वला बुद्द फिल मूजिबति मिन वजूदिल मौजूई कि क़ज़िया मूजिबा में वजूद मौजू जरूरी है। इस पर इश्काल हुआ था कि वजूद मौजू से मुराद अगर मौजू का तसव्वुर है वो तो फिर क़ज़िया सालिबा में भी जरूरी है। क़ज़िया यानी आप अगर हुक्म के एतबार से देखें कि मौजू पर आपने हुक्म लगाना है इस एतबार से तो क़ज़िया सालिबा में भी उसका मौजू का वजूद जरूरी है, इसलिए क्योंकि पहले आप मौजू का तसव्वुर करते हैं फिर उस पर हुक्म लगाते हैं या तो इस बात का या नफी का। जैसे मसलन मैं कहता हूं ज़ैदुन क़ाइमुन या मैं कहता हूं ज़ैदुन लैसा बिक़ाइमिन, तो यहां ज़ैदुन पर चाहे क़ाइमुन का हुक्म लगाएं चाहे उससे क़ाइमुन की नफी करें, दोनों सूरतों में पहले ज़ैद का तसव्वुर करना पड़ता है और फिर उसके लिए महमूल को साबित करेंगे या उसकी नफी करेंगे। तो पहले मौजू का तसव्वुर करना पड़ेगा। तो आपने तो हमें क्या कहा कि मूजिबा में मौजू का वजूद जरूरी है, हालांकि क़ज़िया सालिबा में भी मौजू का वजूद जरूरी है। तो मैंने तफसील बयान की थी और बतलाया था कि मौजू का वजूद जरूरी है या तो हुक्म के एतबार से या सिदक के एतबार से। अगर हुक्म के एतबार से देखा जाए तो फिर क़ज़िया मूजिबा के लिए भी वजूद मौजू जरूरी और क़ज़िया सालिबा के लिए भी वजूद मौजू। बात समझ में आ रही है कि वजूद मौजू जरूरी है या तो हुक्म के एतबार से कि आपने मौजू पर हुक्म लगाना है, या वजूद मौजू जरूरी है सिदक के एतबार से कि वो क़ज़िया क्या हो सादिक आए, क़ज़िया सादिक आए वो पाया जाए मुहक्कक हो। तो अगर हुक्म के एतबार से वजूद मौजू को देखा जाए तो फिर तो वो क़ज़िया मुजिबा में भी जरूरी और क़ज़िया सालिबा में भी जरूरी। क़ज़िया मुजिबा में आप मौजू के लिए महमूल को साबित करते हैं और क़ज़िया सालिबा में आप मौजू से महमूल की नफी करते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में पहले आपको मौजू का तसव्वुर करना पड़ता है और फिर उसके लिए महमूल या तो साबित करते हैं या उससे महमूल की नफी करते हैं। तो हुक्म के एतबार से वजूद मौजू जरूरी है क़ज़िया मुजिबा के लिए भी और क़ज़िया सालिबा के लिए भी। अलबत्ता सिदक के एतबार से सिर्फ क़ज़िया मुजिबा के लिए वजूद मौजू जरूरी है, क़ज़िया सालिबा के लिए वजूद मौजू जरूरी नहीं। मसलन आप कहना चाहते हैं ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद के लिए क़याम का इस्बात करना चाहते हैं, तो यह तभी सादिक आएगा यह क़ज़िया जब ज़ैद मौजूद हो। ज़ैद मौजूद होगा तो उसके लिए क़याम साबित हो सकता है, अगर ज़ैद मौजूद ही नहीं तो उसके लिए क़याम कैसे साबित हो सकता है। बात समझ में आ रही है। ज़ैदुन क़ाइमुन ये क़ज़िया तभी सादिक आएगा जब ज़ैद का वजूद हो, क्योंकि इस क़ज़िये में क्या किया जा रहा है, ज़ैद के लिए क़याम को साबित किया जा रहा है। ज़ैद होगा तो उसके लिए क़याम भी साबित होगा और फिर ही ये क़ज़िया सादिक आएगा कि ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, वरना तो सादिक ही नहीं आएगा। आप ज़ैदुन क़ाइमुन कह रहे हैं और ज़ैद का वजूद ही नहीं, तो फिर ये क़ज़िया कैसे सादिक आएगा भाई, जिसके मौजू का वजूद ही नहीं। तो क़ज़िये के सादिक आने के लिए मुजिबा में वजूद मौजू जरूरी है, क्योंकि आप क्या करते हैं इस पर हुक्म लगाते हैं और इसके लिए महमूल को साबित करते हैं, और ये तभी उसके लिए साबित हो सकेगा जब मौजू का वजूद हो, यानी वो मौजूद हो। तो गोया यूं कहें कि वजूद मौजू जरूरी है दो एतबार से, एक या तो हुक्म के एतबार से या सिदक के एतबार से। अगर हुक्म के एतबार से देखें तो फिर क़ज़िया मुजिबा नहीं बल्कि क़ज़िया सालिबा में भी वजूद मौजू जरूरी है, और अगर सिदक के एतबार से आप कहते हैं तो फिर सिदक के एतबार से सिर्फ क़ज़िया मुजिबा में वजूद मौजू जरूरी है, क़ज़िया सालिबा में वजूद मौजू जरूरी नहीं। किस तरह, मैंने मिसाल भी जिक्र की थी। मसलन मैं कहता हूं अलहिमारु लैसा बिनातिकिन, गदा नातिक नहीं है। मैंने गदे से नातिक होने की नफी की और गदे का वजूद है, मौजू का वजूद है, अब दूसरा कजिया मैं लाऊंगा और इसमें आप देखना मौजू का वजूद नहीं होगा। शरीकुल बारी लैसा भी मौजूद इन, अल्लाह का शरीक मौजूद नहीं है। तो अल्लाह के शरीक से देखो मैंने वजूद की नफी कर दी, तो यह कजिया सालिबा है, कजिया सालिबा। और मुझे बताइए क्या यह सादिक है या सादिक नहीं? शरीकुल बारी लैसा भी मौजूद इन, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, मुझे बताइए सादिक है काजिब है? सादिक है। और हालांकि इसका जो मौजू है शरीकुल बारी उसका वजूद नहीं है, इसका वजूद देखो मौजू का वजूद नहीं है, फिर भी कजिया सालिबा सादिक आ रहा है। और अलहिमारु लैसा भी नातिकिन, इसमें यह भी कजिया सालिबा है और इसके अंदर वजूद मौजू, वजूद मौजू है, वजूद मौजू। तो देखो कजिया सालिबा में वजूद मौजू हो या ना हो, दोनों सूरतों में वो सादिक आ सकता है। अलहिमारु लैसा भी नातिकिन, यह कजिया सादिक है, हिमार नातिक नहीं है, कजिया सालिबा है और सादिक आ रहा है और मौजू का वजूद है, हिमार का वजूद है। और दूसरा कजिया जो है शरीकुल बारी लैसा भी मौजूदिन, वो भी सालिबा है और उसमें मौजू का वजूद नहीं, लेकिन फिर भी वो सादिक आ रहा है। मालूम हुआ सालिबा जो है वजूद मौजू हो तब भी सादिक आ सकता है और वजूद मौजू ना हो फिर भी सादिक आ सकता है, जबकि कजिया मुजिबा में ऐसा नहीं है। उसके अंदर वजूद मौजू होगा तो वह सादिक आएगा, अगर वजूद मौजू नहीं तो वह सादिक भी नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई। हासिल कलाम यह हुआ कि कजिया मुजिबा के अंदर वजूद मौजू जरूरी है, हुक्म के एतबार से भी और सिदक के एतबार से भी, जबकि कजिया सालिबा में वजूद मौजू जरूरी है हुक्म के एतबार से सिर्फ, सिदक के एतबार से वजूद मौजू जरूरी नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बतलाया था कि जो वजूद है ये तीन किस्म पर हो सकता है, वजूद मुहक्कक भी हो सकता है, वजूद मुकद्दर भी हो सकता है और वजूद जहनी भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? वजूद कितनी किस्म पर हो सकता है? मुहक्कक हो सकता है यानी खारिज में मौजूद हो, और वजूद मुकद्दर भी हो सकता है यानी जिसको फर्ज कर लिया गया हो, और वजूद जहनी भी हो सकता है यानी जो सिर्फ जहन में मौजूद हो। और इससे पहले मैंने बताया था कि दो बातें याद रखें कि मौजू जो है अपने अफराद के एतबार से दो किस्म पर है, एक तो है मुमकिनुल अफराद और एक है मुमतनेउल अफराद। एक मौजू वो होगा जिसके अफराद मुमकिन होंगे और एक मौजू वो होगा जिसके अफराद मुमकिन नहीं है, मुमतनेअ है। तवज्जो है? तो मौजू अपने अफराद के एतबार से कितनी किस्म पर है? दो। या तो मौजू जो है मुमकिनुल अफराद होगा यानी उसके अफराद मुमकिन हैं, या मौजू मुमतनेउल अफराद होगा यानी इसके अफराद मुमकिन नहीं हैं। और नीज मैंने आपको यह भी बतलाया था कि वजूद दो किस्म पर है, एक वजूद बिल फेल और एक वजूद बिल कुव्वा। वजूद बिल फेल का माना यह है कि एक चीज का वजूद फिलहाल हो, एक चीज का वजूद फिलहाल हो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? वजूद बिल फेल। और एक है वजूद बिल कुव्वा यानी जिसका वजूद मुमकिन है, उसमें सलाहियत है यानी वो मुमकिन है। तो वजूद दो किस्म पर हुआ, एक वजूद बिल फेल है जो फिलहाल जिसका वजूद हो, और एक वजूद बिल कुव्वा है यानी जिसका होना मुमकिन हो, जिसका होना तो वो वजूद बिल कुव्वा है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आइए देखिए आगे सबक भाई। तो कहते हैं वला बुद्दा फिल मुजिबति मिन वजूदिल मौजूई, और जरूरी है कजिया मुजिबा के अंदर मिन वजूदिल मौजूई, मौजू का वजूद, कजिया मुजिबा में मौजू का वजूद जरूरी है। मतन पर नजर है तो इम्मा मुहक्ककन, फिर ये वजूद मौजू या तो मुहक्कक होगा यानी खारिज में मौजूद होगा, फही अल खारिजियतु तो ये कजिया खारिजिया है, और मुकद्दरन या वजूद मौजू मुकद्दर होगा, फल हकीकियतु तो ये कजिया हकीकिया है, और ज़हनन या वजूद मौजू ज़हन के एतबार से होगा, फ़ज़हनियतु तो ये कजिया ज़हनिया है। तो वजूद मौजू के एतबार से कजिया की तकसीम कर रहे हैं और इस एतबार से कजिया तीन किस्म पर है, या तो कजिया खारिजिया होगा या हकीकिया होगा या ज़हनिया होगा। कितनी किस्में? तीन। नंबर एक कजिया खारिजिया, नंबर दो कजिया हकीकिया और नंबर तीन कजिया जहनिया। तीन किस्म पर है, इनको अच्छी तरह समझ लें भाई, अच्छी तरह। कजिया खारिजिया वो है जिसका मौजू वजूद मुहक्कक हो। जरा मतन पे नजर रखो, इम्मा मुहक्ककन फहियल खारिजियतु। कजिया खारिजिया वो है जिसका मौजू वजूद मुहक्कक हो, और आगे आ रहा है अव मुकद्दरन फल हकीकियतु। कजिया हकीकिया वो है जिसका मौजू वजूद मुकद्दर हो, इसी लफ्ज को साथ जोड़ दिया करें, वजूद मुकद्दर हो। औ ज़हनन फ़ज़हनियतु, और कज़िया ज़हनिया वो है जिसका मौजू वजूद ज़हनी हो। तारीफ समझ में आ रही है? मुहक्कक हो तो वो खारिजिया है, मुकद्दर हो तो हकीकिया है, और ज़हनी हो तो ज़हनी है। इसी से बना लें, पूरी तारीफ कर लें। कज़िया खारिजिया किसे कहते हैं? जिसका मौजू, बात मौजू की चल रही है, मौजू के वजूद के एतबार से, मौजू के वजूद के एतबार से यह तकसीम हो रही है कि अगर कजिया का मौजू वजूद मुहक्कक हो। वजूद के एतबार से तीन किस्में हैं, वजूद मुहक्कक है, एक वजूद मुकद्दर है, और एक वजूद जहनी है। तो कजिया का मौजू अगर वजूद मुहक्कक हो तो वह कजिया खारिजिया, और अगर कजिया का मौजू वजूद मुकद्दर हो तो वह कजिया हकीकिया, और अगर कजिया का मौजू वजूद जहनी हो तो वह कजिया जहनिया। तारीफ समझ में आ गई? फिर एक दफा दोहरा लें, कजिया का मौजू क्या हो अगर वजूद मुहक्कक हो तो वह खारिजिया, और कजिया का मौजू अगर वजूद मुकद्दर हो तो वह कजिया हकीकिया है, और अगर कजिया का मौजू वजूद जहनी हो तो वह कजिया जहनिया है। यह तकसीम है भाई, तफसील याद रखो। कजिया खारिजिया, कजिया खारिजिया इसकी तफसील समझ लो। कजिया खारिजिया वो है जिसका मौजू वजूद मुहक्कक हो, यानी उसके अफराद खारिज में हकीकतन मौजूद हों, उसके अफराद खारिज में बिलफेल कहें, बिलफेल मौजूद हों। कजिया खारिजिया किसे कहते हैं? पहले पहले वही तारीफ साथ जोड़ो, कजिया खारिजिया किसे कहते हैं? जिसका मौजू वजूद मुहक्कक हो, यानी उन अफराद पर हुक्म है। इसमें हुक्म किस पर होता है? अफराद पर, यानी उन अफराद पर हुक्म है जो बिलफेल खारिज में मौजूद हों। अफराद मुहक्कक पर हुक्म है, किस पर? अफराद मुहक्कक यानी जिनका वजूद खारिज में है, जिनका वजूद। मसलन मसलन मैं कहता हूं अल इंसान हैवान, ये यूं कहें कुल्लो इंसान इन हैवान, हर इंसान क्या है? हैवान है। अब देखो ये हुक्म कुल्ली की माहियत पर है या अफराद पर है? कुल्लो इंसान इन हैवान, मुझे बताइए हुक्म जो है कुल्ली की माहियत पर है या कुल्ली के अफराद पर है? कुल्ली के अफराद पर है। किससे पता चला? कुल्लो से। शाबाश, माहियत तो एक होती है, जब माहियत मुराद होगी वहां कुल का लफ्ज लाने की जरूरत नहीं। जब कुल कहा जा रहा है इन्हीं सारे, तो सारे तो अफराद हो सकते हैं कि या सारे होंगे या बस, तो ये कुल ने बताया कि हुक्म किस पर लग रहा है? अफराद पर। मैंने दूसरा तरीका भी बतलाया था कि कैसे पता चलेगा अफराद पर हुक्म है, कुल्ली को हटाओ और उसकी जगह उसके अफराद ले आओ, कुल्लो इंसान इनकी जगह जरा जैद ले आओ, जैद उन हैवान उन, कहना सही है या गलत है? बकर उन हैवान उन, खालिद उन हैवान उन, देखा ये कहना सही मालूम हुआ, हुक्म कुल्ली के अफराद पर है यहां। तो कुल्लो इंसान इन हैवान उन, यहां हुक्म किस पर है? अफराद पर है, और वो अफराद वो तीन किस्म पर हो सकते हैं, या तो वो मुहक्कक होंगे या मुकद्दर होंगे या ज़हनन होंगे, यानी सिर्फ ज़हन में होंगे। तो कज़िया खारिजिया वो है जिसका मौजू क्या हो? वजूद मुहक्कक हो। क्या माना वजूद मुहक्कक हो? मतलब ये है यानी उसके अफराद बिलफेल खारिज में मौजूद हों। खारिजिया नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अफराद बिलफेल खारिज में मौजूद हों। कुल्लो इंसान इन हैवान उन, मुझे बताइए ये कुल्लो इंसान इन मौजू क्या? कुल्लो इंसान इन, तो ये इंसान जो है इंसान के जो अफराद खारिज में बिलफेल मौजूद हैं उन पर हुक्म लगाया जा रहा है कि वो क्या हैं? हैवान हैं। इंसान के जो अफराद बिल फेल खारिज में मौजूद हैं, यानी जैद, अमर, बकर, खालिद वगैरह, उन पर हुक्म लगाया जा रहा है कि वो क्या हैं? हैवान हैं। फिर दोहराएं भाई, बार बार मुश्किल मकाम है, बार बार मैं इसलिए तकरार करवा रहा हूं। कजिया खारिजिया किसको कहते हैं? जिसका मौजू वजूद वजूद मुहक्क हो। क्या माना वजूद मुहक्क? यानी उन अफराद पर हुक्म लगाया जा रहा है जो खारिज में बिलफेल मौजूद हैं। कुल्लो इंसान इन हैवान, उन हर इंसान क्या है? हैवान। यह हुक्म किस पर लगाया जा रहा है? खारिज में बिलफेल जो इंसान के अफराद मौजूद हैं उन पर हुक्म लगाया जा रहा है कि वो क्या हैं? हैवान हैं। तो इसमें किस पर हुक्म लगाया जाता है? मौजू के उन अफराद पर जो बिलफेल खारिज में मौजूद हैं। और दूसरी किस्म हुई कजिया हकीकिया। कजिया हकीकिया वो है जिसका मौजू क्या हो? वजूद मुकद्दर हो। कजिया हकीकिया किसे कहते हैं? जिसका मौजू वजूद मुकद्दर हो, यानी हुक्म उन अफराद पर हो जिनका वजूद मुमकिन हो। ये मुश्किल जगह है, समझ लो। उन अफराद पर हुक्म है जो मुमकिन हो, यानी यूं कहें जो मुमकिनुल वजूद हो, जो मुमकिनुल जिनका वजूद मुमकिन है। और उसकी मिसाल भी यही ले लें, कुल्लो इंसान इन हैवान, हर इंसान क्या है? हैवान है। मैं इंसान के जो खारिज में अफराद हैं उन पे हुक्म नहीं लगा रहा, यहां मैं वजूद मुकद्दर पे हुक्म लगा रहा हूं, यानी उन अफराद पर जो खारिज में मुमकिन हो सकते हैं। तवज्जो है, जो खारिज में मुमकिन हो सकते हैं। मुझे बताइए, इंसान खारिज में मुमकिन है या मुमकिन नहीं? आप कहेंगे मुमकिन को तो छोड़िए, बिलफेल भी वो मौजूद है, बिलफेल भी। तो यहां कजिया हकीकिया में वजूद मुकद्दर पर हुक्म लगाया जाता है, यानी मौजू के उन अफराद पर हुक्म होता है जो क्या होते हैं? मुमकिनुल वजूद। किन पर होता है? जो खारिज में मुमकिनुल वजूद हो, यानी जिनका खारिज में होना मुमकिन हो। आम इससे कि खारिज में हैं या खारिज में नहीं है, मुमकिन होना चाहिए। खारिज में हैं या नहीं, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, तो भी उसमें वो भी इसमें दाखिल, जो खारिज में नहीं है वो भी इसमें दाखिल, लेकिन होने मुमकिन चाहिए। देखो मिसालों से और वजाहत होगी। मसलन मैं आपको कहता हूं, कुल्लु अनका अताइरुन, हर अनका क्या है? हर अनका परिंदा है। अनका मैंने बताया था एक फर्जी परिंदा है, कहते हैं जिसका एक पर मशरिक में है तो एक पर मगरिब में है, तो ये ऐसा परिंदा है, एक फर्जी परिंदा है। क्या है? फर्जी परिंदा है। लेकिन क्या ऐसा परिंदा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुमकिन है, हो सकता है, है नहीं लेकिन मुमकिन तो है। एक चीज नामुमकिन होती है। मैं आपको कहता हूं ऊंट जो है वो सुई के नाके में से निकल जाए, क्या ऊंट सुई के नाके में से निकल सकता है? नहीं, वो मुमकिन ही नहीं है। और हां, ऐसे परिंदे का होना मुमकिन है, लेकिन हमें मिला नहीं आज तक। हो सकता है, मुमकिन है। बात समझ में आ रही है? एक चीज होती है नामुमकिन, जो हो ही नहीं सकती, जैसे लाश है। लाश है मुमकिन ही नहीं है खारिज में। खारिज में जो भी चीज आप फर्ज करेंगे वो तो लाश है नहीं होगी, वो तो क्या होगी? वो तो शय होगी। और जैसे शरीकुल बारी, जो खारिज में मुमकिन ही नहीं है भाई। तो कुछ चीजें हैं जो मुमकिन ही नहीं होती, और कुछ चीजें जो मुमकिन तो हैं लेकिन हमें आज तक मिली नहीं। तो अनका क्या है? फर्जी परिंदा है। तो मैं कहता हूं कुल्लु अनका ताइरुन, हर अनका क्या है? परिंदा है। हर अनका परिंदा है। पहले मुझे यह बताइए, यह हुक्म मैं अनका के माहियत पर लगा रहा हूं या उसके अफराद पर? कुल्लु अनका अताइरुन, यह हुक्म मैं कुल्ली की माहियत पर लगा रहा हूं या उसके अफराद पर? कैसे पता चला? शाबाश, कुल्लू का लफ्ज मैं लेकर आया, कुल्लू ने बतलाया कि यहां अफराद मुराद हैं, माहियत मुराद नहीं। दूसरा तरीका क्या था? इस कुल्ली को हटाएं और एक एक फर्द को लाएं और उस पर हुक्म लगाएं। जरा मसलन फर्ज करो एक अनका सामने मौजूद हो और मैं आपको कहता हूं हाजल अनका उताइरुन। पहले था कुल्लु अनका, वो था कुल्ली। अनका क्या था? कुल्ली। अब मैं हाजा, और हाजा तो किसी मुअय्यन की चीज की तरफ इशारा होता है, वो तो जुजी हकीकी होती है। तो मैं एक जुजी हकीकी की तरफ इशारा करके कह रहा हूं हाजल अनका उताइरुन। ये अनका परिंदा है, क्या मेरा कहना गलत है? ठीक है, ठीक है। जैसे मैं कहता था, आपने कहा था कुल्लो इंसानिन हैवानुन, वहां मैंने कुल्लो इंसान को हटाया था और जैद ले आया था, जैदुन हैवानुन, देखो वो हुक्म भी सही था। मानू वह हुक्म किस पर है? अफराद पर। यहां पर भी कुल्लू अनका की जगह मैं अनका की एक जूजी ले आया, यानी हाजल अनका, ये वाला अनका, ये क्या है? तायरुन। देखो मेरा ये कहना सही है। दूसरा अनका की तरफ मैंने इशारा किया और मैंने कहा हाजल अनका उतायरुन, ये अनका क्या है? परिंदा। देखो हर एक जुजी पर भी हुक्म लगा रहे हैं तो ठीक लग रहा है, बात समझ में आ रही है। मालूम हुआ यहां हुक्म किस पर है? अफराद पर है। तो बात चल रही थी कजिया हकीकिया की, कजिया हकीकिया में हुक्म किस पर होता है? उसमें हुक्म होता है वजूद मुकद्दर पर। किस पर हुक्म होता है? वजूद मुकद्दर पर, यानी उन अफराद पर हुक्म होता है जो खारिज में मुमकिनुल वजूद हों। तवज्जो है, यानी उन अफराद पर हुक्म होता है जो खारिज में मुमकिनुल वजूद हों, जिनका वजूद मुमकिन हो। आम इससे कि खारिज में बिलफेल भी वो हैं या बिलफेल नहीं, अगर बिलफेल भी है तो अच्छी बात है, और अगर बिलफेल नहीं है लेकिन मुमकिन है तो उन पर हुक्म लगता है। जैसे कुल्लु अनका ताएरों, देखो कुल्लु अनका ये मौजू है इस कजिए का, और हुक्म किस पर लगाया जा रहा है? अफराद पर। और ये अनका के अफराद खारिज में मुमकिन है या नहीं? मुमकिन नहीं है, मुमकिन है, अगरचे बिलफेल नहीं लेकिन मुमकिन तो है, बिलफेल बेशक ना हो लेकिन अफराद क्या है? मुमकिन। और हमने भी उसी पर हुक्म लगाया कि हर अनका क्या है? परिंदा है। यानी कहने का मतलब यह है कि खारिज में जब भी अनका पाया जाए, आप खारिज में जो भी अनका फर्ज करेंगे वो ताइर होगा, वो परिंदा होगा, उसके लिए ताइर होने का हुक्म साबित होगा। कुल्लु अनका अताइर, कुल्लु अनका है मौजू और ताइर क्या है? महमूल। माना यह है कि अनका का खारिज में आप कोई भी फर्द फर्ज करोगे तो उसके लिए ताइर होना साबित होगा, उसके लिए यह वाला महमूल साबित होगा। आम इससे कि खारिज में बिलफेल भी वो है या बिलफेल नहीं, अनका तो खारिज में बिलफेल नहीं है। हम दूसरी मिसाल कर लेते हैं, उसमें देखना खारिज में बिलफेल भी अफराद होंगे। जैसे मैं कहता हूं कुल्लो इंसानिन हैवानुन, हर इंसान क्या है? हैवान। पहले मैंने इंसान के उन अफराद पर हुक्म लगाया था जो खारिज में बिलफेल मौजूद थे, अब मैं खारिज में जो बिलफेल मौजूद है उनका इरादा नहीं कर रहा, बल्कि मेरा इरादा यह है कुल्लो इंसान इन हैवान, यानी मैं उन अफराद पर हुक्म लगा रहा हूं जो मुमकिनुल वजूद हैं। इंसान के अफराद, मुझे बताइए इंसान के अफराद मुमकिनुल वजूद हैं या नहीं? खारिज में हो सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे खारिज में हो सकते हैं, बल्कि बिलफेल भी मौजूद हैं। और अनका के अफराद मुमकिनुल वजूद हैं कि नहीं? वो भी मुमकिनुल वजूद हैं लेकिन वो बिलफेल मौजूद नहीं। तो इंसान के अफराद भी मुमकिनुल वजूद, अनका के अफराद भी मुमकिनुल वजूद, फर्क सिर्फ इतना है इंसान के अफराद बिलफेल भी मौजूद हैं और अनका के अफराद बिलफेल मौजूद नहीं। लेकिन बिलफेल को हमने देखना ही नहीं है, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं ये देखो कि ये जो मौजू है इसके अफराद मुमकिनुल वजूद होने चाहिए, फिर चाहे हो चाहे ना हो इससे कोई असर नहीं पड़ता। मौजू के अफराद क्या होने चाहिए? मुमकिनुल वजूद। तो यहां पर कजिया हकीकिया में हुक्म किस पर होता है? वजूद मुकद्दर पर। किस पर हुक्म होता है? वजूद मुकद्दर पर। आम इससे कि वो बिलफेल हो या ना हो, यानी मुमकिनुल वजूद पर हुक्म होता है, उन अफराद पर जो मुमकिनुल वजूद। कुल्लो इंसान इन हैवान, हर इंसान हैवान है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इंसान का कोई भी फर्द खारिज में पाया गया, कोई भी ऐसी चीज खारिज में पाई गई जिसको इंसान कहें तो उसको हैवान भी कहना पड़ेगा। कुल्लो इंसान इन हैवान, जो भी इंसान खारिज में होगा जिसको आप इंसान कहेंगे उसके लिए हैवान होना साबित होगा, उसके लिए हैवान होना
साबित होगा।
तो कजिया हकीकिया में हुक्म किस पर लगाते हैं? वजूद मुकद्दर पर, यानी उन अफराद पर जो खारिज में मुमकिन हैं, जो अफराद खारिज में मुमकिन हैं। ये नहीं देखना कि बिलफेल हैं या बिलफेल नहीं, बस इतना देखो जो अफराद क्या हैं, खारिज में मुमकिन हैं, उन पर हुक्म लगा दिया। तो मैंने कहा कुल्लु अनका अताइरुन, हर अनका क्या है? परिंदा। तो अनका के अफराद खारिज में मुमकिन हैं और उन पर मैंने हुक्म लगा दिया। मेरे कहने का मतलब यह है आप खारिज में कोई भी अनका फर्ज करोगे तो कुल्लु अनका अतायर, उसके लिए क्या महमूल मानना पड़ेगा, तायर, यानी उसको तायर भी मानना पड़ेगा। आप जो भी अनका खारिज में फर्ज करोगे उसके लिए तायर जरूर होगा, यानी यूं कहो जो भी अनका खारिज में अगर कभी पाया गया तो उसके लिए तायर होना जरूर साबित होगा। इसी तरह दूसरी मिसाल क्या, कुल्लु इंसानीन हैवान, हर इंसान क्या है, हैवान। हुक्म किस पर है, वजूद मुकद्दर पर, किस पर, वजूद मुकद्दर पर। क्या माना, इंसान के उन अफराद पर जो मुमकिन उल वजूद, जो खारिज में मुमकिन है, इंसान के जो अफराद खारिज में मुमकिन है मैं उन पर हुक्म लगा रहा हूं, क्या कि वो हैवान है। कुल्लु इंसान इन हैवान, इंसान का हर वो फर्ज जो मुमकिन उल वजूद है वो क्या है, इंसान, चाहे बिल फेल हो चाहे बिल फेल ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई। और जहनिया, तीसरी किस्म है कजिया जहनिया। कजिया जहनिया वो है जिसका मौजू क्या हो, वजूद जहनी हो। तवज्जो है, कजिया खारिजिया का मौजू क्या था, वजूद मुहक्कक, और कजिया हकीकिया का मौजू क्या, वजूद मुकद्दर, और कजिया जहनिया का मौजू क्या, वजूद जहनी, वजूद जहनी। यानी उन अफराद पर हुक्म है जो जहन में मुमकिन उल वजूद हैं, जो जहन में मुमकिन उल वजूद हैं, यानी खारिज में मुमकिन नहीं, जो जहन में मुमकिन उल वजूद हैं। आम इससे कि बिलफेल भी मौजूद हो या मौजूद ना हो, इसमें भी वही दो सूरतें आ जाएंगी। कजिया जहनी में किस पर हुक्म होता है, वजूद जहनी, वजूद जहनी पर, यानी उन अफराद पर जो जहन में मुमकिन उल वजूद है। तवज्जो है, उन अफराद पर जो जहन में मुमकिन उल वजूद हैं, फिर आम है चाहे बिलफेल भी जहन में हो चाहे बिलफेल तो नहीं है लेकिन सिर्फ मुमकिन उल वजूद हैं। मुमकिन उल वजूद दो किस्म पर हो सकता है ना, या तो बिलफेल भी होगा या बिलफेल नहीं। जैसे जैसे अनका और इंसान में गुजरा, अनका भी मुमकिन उल वजूद और इंसान भी मुमकिन उल, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि एक मुमकिन उल वजूद ऐसा है कि उसके बाज अफराद खारिज में बिलफेल भी हैं और दूसरे में बिलफेल नहीं, लेकिन है दोनों मुमकिन उल वजूद, दोनों का वजूद खारिज में हो सकता है और इन दोनों में से एक के अफराद बिलफेल भी हैं, इंसान के अफराद बिलफेल भी हैं और अनका के बिलफेल नहीं। बिलफेल हो या ना हो उसकी तरफ आपने नजर नहीं करनी, बस आपने यह देखना है कि यह चीज खारिज में मुमकिन उल वजूद है। जब खारिज में बिलफेल भी है फिर तो बतरीके औला साबित हो गया कि यह चीज क्या है, मुमकिन उल वजूद है, इसका खारिज में वजूद मुमकिन है। तो यहां इसी तरह जहनिया के अंदर भी, जहनिया के अंदर कजिया जहनिया में हुक्म किस पर है, वजूद जहनी पर, यानी उन अफराद पर जो जहन में मुमकिन उल वजूद है, जो जहन में मुमकिन उल वजूद हैं। जैसे जैसे शरीकुल बारी मुमतनेउन, शरीकुल बारी मुमतनेउन, शरीकुल बारी यानी अल्लाह ताला का शरीक। देखो शरीकुल बारी खारिज में तो मुमकिन नहीं, शरीकुल बारी खारिज में तो मुमकिन नहीं। जहन में आप कोई भी चीज तसव्वुर करो कि ये शरीकुल बारी है तो उसके लिए मुमतने होने का हुक्म साबित करना पड़ेगा। तवज्जो है, क्या कहा इन्होंने, शरीकुल बारी मुमतनेउन, ये कजिया जहनिया है। ये क्या है, कजिया जहनिया किसे कहते थे, जिसका मौजू वजूद जहनी हो। कजिया जहनिया किसे कहते हैं, जिसका मौजू वजूद जहनी। क्या माना वजूद जहनी, यानी हुक्म उन अफराद पर है जिनका वजूद जहनी मुमकिन है, जिनका वजूद जहनी मुमकिन है, और ये आम है चाहे बिलफेल जहन में वजूद हो चाहे बिलफेल जहन में वजूद ना हो। हल कुछ हो रहा है, हल हो रहा है, समझ में आ रही है, मुश्किल जगह, मुश्किल जगह, आसान नहीं है। तो कजिया जहनिया किसे कहते हैं, जिसमें हुक्म, जिसमें हुक्म वजूद जहनी पर होता है, या यूं कहें जिसका मौजू वजूद जहनी होता है, यानी मौजू के उन अफराद पर हुक्म है जिनका वजूद जहन में मुमकिन है। जैसे शरीकुल बारी मुमतनेउन, शरीकुल बारी खारिज में तो मुमकिन नहीं है लेकिन जहन में आप फर्ज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, लेकिन जब भी शरीकुल बारी जहन में फर्ज करोगे उसके लिए इम्तिना वाला हुक्म साबित हो जाएगा। हमेशा उसके लिए कौन सा हुक्म साबित होगा, इम्तिना वाला। जैसे इंसान का कोई भी फर्द आप तसव्वुर करेंगे उसके लिए हैवान होना जरूरी है, इसी तरह शरीकुल बारी जो भी आप फर्ज करोगे उसके लिए मुमतना होना जरूरी है। तो शरीकुल बारी जहन में मौजूद तो नहीं लेकिन मुमकिनुल वजूद है, लेकिन जब भी आप फर्ज करोगे इसका कोई फर्द उसके लिए इम्तिना वाला हुक्म जरूर साबित हो जाएगा, क्योंकि कजिया क्या था, शरीकुल बारी मुमतनेउन। तो खारिज में तो शरीकुल बारी नहीं, मुमकिन ही नहीं है, लेकिन जहन में मुमकिन है, फर्ज किया जा सकता है। फर्ज तो नामुमकिन चीज को भी किया जा सकता है, फर्ज तो नामुमकिन चीज को भी फर्ज किया जा सकता है। तो जैसे यहां पर देखो शरीकुल बारी आप फर्ज कर लें, जैसे ही फर्ज करेंगे जो भी फर्द फर्ज करेंगे उसके लिए इम्तिना वाला हुक्म जरूर साबित होगा। आप जहन में शरीकुल बारी का जो फर्द भी तसव्वुर कर लें उस पर क्या हुक्म लगाना पड़ेगा, इम्तिना वाला हुक्म लगाना पड़ेगा कि ये क्या है, मुमतना है। आपके जहन में इश्काल आएगा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि फर्ज कर लें, जब फर्ज कर लिया तो मुमतने कहां रहा, मुमकिन हो गया यानी जहन में
जी।
आप क्या कह रहे हैं कि शरीकुल बारी मुमतने है, और फिर कह रहे हैं जो भी आप शरीकुल बारी का फर्द जहन में तसव्वुर करेंगे तो उस पर क्या हुक्म लगाना पड़ेगा, इम्तिना वाला, कि यह मुमतने है। भाई आपने फर्ज किया है जहन में, और इम्तिना वाला जो हुक्म लगा रहे हैं वो खारिज के एतबार से लगा रहे हैं कि ये जो चीज मैंने जहन में फर्ज की और जिस पर क्या सादिक आ रहा है कि ये शरीकुल बारी है, ये चीज जो है खारिज में मुमतने है, खारिज में हो ही नहीं सकती खारिज में। तो ये जो इम्तिना वाला हुक्म है ये खारिज के एतबार से है, जहन में तो नामुमकिन चीज भी इंसान फर्ज कर सकता है। जैसे अभी आपने शरीकुल बारी को फर्ज किया, शरीकुल बारी क्या है, इसको आपने फर्ज कर लिया, अगरचे ये नामुमकिन है, शरीकुल बारी हो ही नहीं सकता। तो जहन में फर्ज तो नामुमकिन चीज को भी किया जा सकता है, तो आपने जहन में किसका तसव्वुर किया, शरीकुल बारी के एक फर्द का, तो उसको किस वसफ के साथ मौसूफ करना पड़ेगा, उस पर क्या हुक्म लगाना पड़ेगा, इम्तिना वाला, कि ये जो चीज है जिसको हमने क्या फर्ज किया है, शरीकुल बारी, ये मुमतना है। क्या माना, कहां मुमतना है, खारिज में मुमतना है, जहन में तो आप फर्ज कर रहे हो, बात समझ में आ गई। तो जहन में यह मुमकिनुल वजूद है लेकिन खारिज के एतबार से यह क्या है, मुमतने। तो आप जहन में शरीकुल बारी का जो भी फर्द तसव्वुर कर लेंगे उस पर इम्तिना वाला हुक्म मानना पड़ेगा आपको कि यह क्या है, खारिज में मुमतने है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह। फिर हासिल कलाम क्या हुआ कि कजिया जो है वजूद मौजू के एतबार से तीन किस्म पर है, वजूद मौजू या तो मुहक्क होगा या मुकद्दर होगा या जहनी होगा। अगर वजूद मौजू मुहक्क है यानी खारिज में मौजूद है बिलफेल, यानी हुक्म उन अफराद पर हो जो खारिज में बिलफेल मौजूद हैं, तो फिर इसको कजिया खारिजिया कहेंगे। और अगर मौजू जो है कजिए का मौजू वजूद मुकद्दर हो तो वो कजिया हकीकिया है, यानी हुक्म उन अफराद पर हो जो खारिज में मुमकिन है। आम इससे कि बिलफेल हैं या बिलफेल नहीं, बिलफेल हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, बिलफेल नहीं है वो भी इसमें, हां खारिज में मुमकिनुल वजूद होना चाहिए। मुझे बताइए अनका मुमकिनुल वजूद है कि नहीं, इसी तरह इंसान भी क्या है, मुमकिनुल वजूद, दोनों मुमकिनुल वजूद है। हां अनका बिलफेल मौजूद नहीं, इंसान बिलफेल भी, तो बात यह चल रही है वो चीज क्या होनी चाहिए, मुमकिनुल वजूद। जब इंसान के बाज अफराद खारिज में बिलफेल मौजूद हैं तो फिर तो और ज्यादा बात पक्की हो गई कि इंसान मुमकिनुल वजूद है। जब अफराद मौजूद है बाकायदा तो मालूम हुआ ये वाकई क्या है, मुमकिनुल वजूद, और अनका का कोई फर्द नहीं, फिर भी हमारा जहन हमें बताता है कि यह मुमकिनुल वजूद है, खारिज में हो सकता है, खारिज में बिलफेल तो नहीं लेकिन हो सकता है, और इंसान भी खारिज में हो सकता है। और जब देखा ये तो बिलफेल भी है, ये तो और ज्यादा तसल्ली हो गई कि इंसान वाकई क्या है, मुमकिनुल वजूद है, क्योंकि ये तो बिलफेल भी मौजूद है खारिज में। लेकिन बात यहां चल रही है सिर्फ मुमकिनुल वजूद की, हुक्म किन अफराद पर है, कजिया हकीकिया में उन अफराद पर जो क्या है, मुमकिनुल वजूद हैं, फिर चाहे बाज बिलफेल भी अफराद हों चाहे बिलफेल ना हो, लेकिन हुक्म उन तमाम अफराद पर है जितने भी मुमकिनुल वजूद हैं, जितने भी मैंने कहा कुल्लो इंसान इन हैवानुन, हर इंसान क्या है, हैवान है, यह हुक्म सबको शामिल है। जो भी इंसान का अफराद मुमकिन होगा उसके लिए हैवान वाला हुक्म जरूर साबित होगा। खारिज में जो बिलफेल मौजूद हैं उनके लिए भी हैवान वाला हुक्म साबित है। इंसान हो और हैवान ना हो ही नहीं सकता भाई। कुल नो इंसान इन हैवान, हर इंसान क्या है, हैवान है, चाहे अफराद बिलफेल हो या बिलफेल ना हो। बिलफेल हो तो भी उनके लिए वो मानना पड़ेगा, बिलफेल नहीं है तो उनके लिए भी मानना पड़ेगा। अनका के अंदर अफराद बिलफेल तो खारिज में नहीं, लेकिन हर अनका के लिए तायर होने का हुक्म मानना पड़ेगा, और इंसान के भी हर फर्द के लिए हैवान होने का हुक्म मानना पड़ेगा, चाहे बिलफेल है चाहे बिलफेल नहीं है, सबके लिए मानना पड़ेगा। बात समझ में आ गई अच्छी तरह। और कजिया जहनिया जिसमें मौजू जो है वजूद जहनी हो, जिसका मौजू क्या हो, वजूद जहनी हो, यानी उन अफराद पर हुक्म हो जो जहन में मुमकिनुल वजूद हैं, जो जहन में मुमकिनुल वजूद हैं, जो जहन में हो सकते हैं, फिर चाहे बिलफेल जहन में हो या ना हो, बिलफेल जहन में हो या ना हो, लेकिन हो सकते हैं। जैसे एक मिसाल मैंने दे दी, शरीकुल बारी मुमतनेउ, शरीकुल बारी जहन में बिलफेल तो नहीं है, लेकिन अगर कोई भी फर्ज करें आप, कोई भी चीज ऐसी फर्ज कर लें जिसको आप क्या कहें शरीकुल बारी, तो उसके लिए इम्तिना वाला हुक्म भी आपको मानना पड़ेगा कि ये जो चीज है खारिज में मुमतने है, यानी खारिज में ये चीज यानी शरीकुल बारी हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई। तो जहन में शरीकुल बारी बिलफेल तो नहीं है, लेकिन फर्ज किया जा सकता है या नहीं, फर्ज तो हर चीज की जा सकती है, तो शरीकुल बारी मुमतनेउन, उसके लिए इम्तिना वाला हुक्म भी मानना पड़ेगा। देखिए भाई मतन में पहले एक दफा तर्जमा देख लें, कहते हैं वला बुद्दा फिल मुजीबति मिन वजूद अल मौजूई, और जरूरी है कजिया मुजीबा के अंदर मौजू का वजूद, इम्मा मुहक्ककन, फिर वो मौजू का वजूद जो है या तो मुहक्कक होगा यानी खारिज में बिलफेल पाया जाएगा, फहियल खारिजिया, तो ये कजिया खारिजिया है, और मुकद्दरन, या वो मौजू का वजूद जो है मुकद्दर होगा यानी खारिज में मुमकिन होगा, खारिज में मुमकिन होगा, फल हकीकियत, तो कजिया हकीकिया है, और जहनन, या मौजू का जो वजूद है जहन में है, जहन में, तो फ़ज़हनिया, तो वो कज़िया ज़हनिया है भाई। नीचे शरा में आइए भाई, कहते हैं कौलहु वला बुद्दा फिल मुजिबती ऐ फी सिद्क़िहा, ऐ फी सिद्क़िहा, देखो सिद्क़िहा यहां जमीर मुजिबा को राजे है, सिद्क़िहा की जमीर किसको राजे, मुजिब, हा जमीर की जगह मुजिबा ले आए, फी सिद्क़िल मुजिबती इबारत में नजर है, आई फी सिद्किल मुजिबती, मतन में था वला बुद्दा फिल मुजिबती, इन्होंने क्या कहा, फी सिद्किल मुजिबती, बतला दिया, मैंने आपको बतलाया था कि इन्होंने क्या कहा था, वजूद मौजू जरूरी है मुजिबा में, वजूद मौजू जरूरी है किस में, मुजिबा में, तो मैंने आपको बतलाया था कि वजूद मौजू जरूरी हो या तो हुक्म के एतबार से होगा या सिदक के एतबार से, अगर हुक्म के एतबार से वजूद मौजू जरूरी है फिर तो सिर्फ मुजिबा में नहीं होता, वो तो सालिबा में भी जरूरी है, तो यह बात गलत हो जाती है कि मुजिबा के अंदर मतन में क्या है वला बुद्दा फिल मुजिबाती, मुजिबा के अंदर वजूद मौजू जरूरी है, हालांकि सालिबा में भी वजूद मौजू जरूरी है, मैंने बताया था यहां सिदक मुराद है, सिदक के एतबार से मुजिबा के अंदर वजूद मौजू जरूरी है, सालिबा उसमें वजूद मौजू हो या ना हो, दोनों सूरतों में वो सादिक आ सकता है, तो यहां सिदक मुराद है, और सिदक के एतबार से सिर्फ किसके लिए वजूद मौजू जरूरी है, मुजिबा में जरूरी है, सालिबा में नहीं, इसीलिए इन्होंने यहां सिदक का लफ्ज निकाला, वला बुद्दा फिल मुजिबती ऐ फी सिद्किल मुजिबती, मुजिबा के सादिक आने में वजूद मौजू जरूरी है, आई फी सिद्किहा मिन वजूद मौजू, यानी मुजिबा के सादिक आने के अंदर वजूद मौजू जरूरी है, वदालिका, अब ये दलील जिक्र करने लगे, मुजिबा के अंदर इधर देखिए, मुजिबा के अंदर वजूद मौजू क्यों जरूरी है सिदक के लिए, कहते हैं इसलिए क्योंकि मुजिबा में आप एक चीज को दूसरी चीज के लिए साबित कर रहे हैं, तो अगर मौजू वो खुद उसका वजूद होगा तो उसके लिए वो चीज भी साबित होगी और कजिया सादिक आएगा, जैसे जैदुन कायमुन, जैदुन زید کا وجود ہوگا تو قیام آپ اس کے لیے ثابت کریں گے اور قضیہ صادق آئے گا. زید کا وجود ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں زید قائم. زید کیا ہے؟ زید کھڑا. اگر زید کا وجود ہی نہیں ہے پھر یہ صادق آ سکتا ہے؟ پھر زید قائم کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ قضیہ تب ہی صادق آئے گا جب موضوع کا کیا ہو. دیکھو اس میں نے کیا کہا, زید کیا ہے؟ زید قائم, زید کھڑا ہے. معلوم ہوا واقعے کے اندر وہ چیز جو کیا ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, زید کہتے ہیں, اس کے لیے کیا ثابت ہے؟ قیام ثابت ہے. تو زید ہوگا تو اس کے لیے واقعے میں بھی قیام ثابت ہوگا. زید نہیں تو اس کے لیے قیام کیسے ثابت ہے؟ جب اس کے لیے قیام ثابت ہوگا تو یہ قضیہ صادق ہو جائے گا زید قائم والا. اور اگر زید ہی نہیں ہے تو پھر یہ صادق آ سکتا ہے؟ صدق اور کذب کسے کہتے ہیں؟ واقع کے ساتھ مطابقت اور عدم مطابقت. زید قائم واقع کے ساتھ کب مطابقت ہوگی؟ جب خارج میں زید کھڑا ہو. اگر زید ہے ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں ہے, تو پھر یہ صادق بھی نہیں آ سکتا. تو کہتے ہیں وذالک, اور یہ اس وجہ سے, لأن الحکم فی الموجبتی, اس لیے کیونکہ موجبہ کے اندر جو حکم ہوتا ہے وہ ثبوت شیئن لشیئن, وہ ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہوتا ہے. موجبہ میں کیا حکم ہوتا ہے؟ ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہوتا ہے, اور سالبہ میں ایک شے سے دوسری شے کی نفی ہوتی ہے. یہی بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں لأن الحکم فی الموجبتی ثبوت شیئن لشیئن, موجبہ کے اندر جو حکم ہوتا ہے وہ ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہوتا ہے. وہ ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت لہ, اور ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت, یہ فرع ہے مثبت لہو کے ثبوت کے لیے. عن الموضوع, یعنی کہ موضوع. ادھر دیکھیے, قضیہ موجبہ میں موضوع کے لیے محمول کو ثابت کیا جاتا ہے, ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا جاتا ہے. میں زید کے لیے قیام ثابت کرنا چاہتا ہوں, تو زید کے لیے قیام تبھی ثابت ہوگا جب پہلے زید, یعنی مثبت لہو. مثبت لہو کیا مانا؟ مثبت لہو جس کے لیے آپ محمول کو کیا کر رہے ہیں, ثابت کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو محمول کیا ہوا؟ مثبت, اس کو ثابت کیا گیا ہے. زید قائم, یہ قائم کیا ہے؟ مثبت, اس کو ثابت کیا گیا ہے. اور کس کے لیے ثابت کیا؟ زید کے لیے. تو زید کیا ہوا؟ مثبت لہو, یعنی اس کے لیے ثابت کیا گیا ہے. توجہ ہے, قضیہ موجبہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کا ثبوت ہوتا ہے دوسری چیز کے لیے, اور ثبوت تبھی ہوگا, پہلے مثبت لہو کا تو ثبوت ہو جائے. زید کے لیے قیام تبھی ثابت ہوگا, پہلے زید کا اپنا ثبوت تو ہو, زید خود تو موجود ہو. زید ہوگا تو اس کے لیے قیام بھی ثابت ہوگا, زید نہیں تو اس کے لیے قیام سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ قضیہ موجبہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کر رہے ہیں. دیکھو مثلا زید قائم, میں زید کے لیے کیا ثابت کر رہا ہوں؟ قیام کو. کس کو؟ قیام. زید کے لیے قیام تبھی ثابت ہوگا جب زید خود تو پہلے ثابت ہو, زید خود تو موجود ہو. یہ معنی ہے لأن الحکم فی الموجبتی ثبوت شیئن لشیئن, اس لیے کیونکہ موجبہ کے اندر ایک شے کا ثبوت ہوتا ہے دوسری شے کے لیے. وہ ثبوت شیئن لشیئن, اور ایک شے کا دوسری شے کے لیے جو ثبوت ہے, فرع ثبوت المثبت لہو, وہ فرع ہے مثبت لہو کے ثبوت کے لیے. مثبت لہو ثابت ہوگا تو اس کے بعد ہی اس کے لیے کوئی چیز ثابت, یعنی یوں کہ مثبت لہو یعنی زید, زید کا ثبوت ہے اصل, اور زید کے لیے قیام کا ثبوت ہے اس کی فرع. زید کا اپنا وجود ثابت ہوگا تو پھر ہی اس کے لیے قیام بھی ثابت ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے وہ ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت لہو, اور ایک شے کے لیے دوسری شے کا ثبوت, یہ فرع ہے مثبت لہو کے ثبوت کے لیے, یعنی اس کے وجود کے لیے. عن الموضوع, یعنی کہ موضوع. مثبت لہو یعنی کہ موضوع جو ہے. فإنما يصدق هذا الحكم اذا كان الموضوع محققا موجودا. فإنما يصدق هذا الحكم, یہ حکم اسی وقت صادق آئے گا, اذا كان الموضوع محققا موجودا, جب اس کا موضوع کیا ہو؟ محقق ہو, یعنی موجود ہو. اما فی الخارج, ادھر دیکھیے بھائی, یاد رکھو قضیہ موجبہ میں, قضیہ موجبہ میں انہوں نے کیا بتایا؟ وجود موضوع ضروری ہے, پھر ہی اس پر محمول والا حکم لگ سکے گا. اور پھر یاد رکھو, اگر آپ خارج کے اعتبار سے حکم لگانا چاہ رہے ہیں تو وجود موضوع خارج میں ضروری, اور اگر آپ ذہن کے اعتبار سے حکم لگا رہے ہیں تو وجود موضوع ذہن میں ضروری ہے. वजूद मौजू जहन में जरूरी है, तवज्जो है। आप एक चीज पर दूसरी चीज का हुक्म लगा रहे हैं तो वजूद मौजू जरूरी है। अगर खारिज के एतबार से हुक्म लगा रहे हैं तो वजूद मौजू खारिज में जरूरी, और अगर आप जहन के एतबार से हुक्म लगा रहे हैं तो वजूद मौजू जहन में जरूरी है। वजूद मौजू जैसे कुल इंसान इन हैवान, हर इंसान क्या है? हैवान है। मैं हुक्म लगा रहा हूं जहन के एतबार से या खारिज के एतबार से? खारिज के एतबार से कि खारिज में इंसान का जो भी फर्द है वो क्या है? हैवान है। ये यूं कहें जैसे मैंने कहा जैद उन कायम, जैद खड़ा है, ये जहन के एतबार से मैं हुक्म लगा रहा हूं या खारिज और वाकई के एतबार से? खारिज के एतबार से। मैं बतलाना यह चाहता हूं कि खारिज में जो जैद है ना वो उस कियाम के साथ इस वक्त मौसूफ है, वो खड़ा है भाई। तो ये हुक्म मैं किस एतबार से लगा रहा हूं? खारिज के एतबार से। और कभी हुक्म जो है जहन के एतबार से लगाया जाता है, जैसे मैं कहता हूं अल इंसानु नौउन, इंसान क्या है? नौ है भाई। खारिज में तो इंसान के अफराद नौ नहीं है, जैद नौ है, बकर नौ है, खालिद नौ है, नहीं। ये मैं किसके एतबार से हुक्म लगा रहा हूं? जहन के एतबार से हुक्म लगा रहा हूं। तो बाज़ औक़ात हुक्म किस एतबार से होता है? खारिज के एतबार से। बाज़ औक़ात हुक्म लगाया जाता है किस एतबार से? जहन के एतबार से। तो अगर आप खारिज के एतबार से मौजू पर हुक्म लगा रहे हैं तो खारिज में मौजू का वजूद जरूरी, और अगर आप जहन के एतबार से मौजू पर हुक्म लगा रहे हैं तो जहन में मौजू का वजूद जरूरी है। बात समझ में आ गई? यह माना है, कहते हैं फइन नमा यस्तुकु हादल हुक्म इदा कानल मौजू मुहक्कन मौजूदान, और यह हुक्म साबित आएगा, यानी एक चीज का दूसरी चीज के लिए जो सबूत है यह सादिक आएगा। कब? इदा कानल मौजू मुहक्कन मौजूदान, जबकि इसका मौजू क्या हो? मुहक्कक और मौजूद हो। इम्मा फिल खारिजी, या तो खारिज में, इन कानल हुक्म बिसबूत इल महमूल लहू हुना का, अगर हुक्म लगाया जा रहा है महमूल के साबित होने का उसके लिए, हुना का वहां यानी खारिज में, हुना का वहां यानी खारिज। अगर आप खारिज के एतबार से मौजू के लिए क्या साबित करना चाहते हैं? महमूल, तो खारिज में मौजू का वजूद होना चाहिए, और अगर आप जहन के एतबार से मौजू के लिए पर हुक्म लगा रहे हैं तो मौजू कहां होना चाहिए? जहन में उसका वजूद होना चाहिए। तर्जमा समझ में आ रहा है? इन्नमा यस्तुकु हादल हुक्म इदा कानल मौजू मुहक्कन मौजूदन, ये वाला हुक्म सादिक आएगा। कौन सा हुक्म? ये जो एक चीज को दूसरी चीज के लिए आप क्या कर रहे हैं? सादिक, ये उसी वक्त सादिक आएगा। इदा कानल मौजू मुहक्कन मौजूदन, जब मौजू क्या हो? मुहक्कक हो, मौजूद हो। फिर ये मौजूद होना दो तरह से है, इम्मा फिल खारिजी, या तो किस एतबार से होगा? खारिज के एतबार से होगा। आगे आ रहा है औफिस जहनी, या जहन के एतबार से। अगर आप हुक्म किस एतबार से लगा रहे हैं? खारिज के एतबार से, तो वजूद मौजू कहां जरूरी? खारिज में। और अगर आप जहन के एतबार से हुक्म लगा रहे हैं तो वजूद मौजू कहां जरूरी? जहन में जरूरी। बात समझ में आ गई? अब देखो तर्जमा, इम्मा फिल खारिज, या तो वो खारिज में उसका वजूद होगा। इनकान अल हुक्म बिसबूत इल महमूल लहू हो ना का, अगर उसके लिए महमूल के सबूत का हुक्म हो ना का, कहां पर? खारिज में। अगर उसके लिए महमूल के सबूत का हुक्म हो तो खारिज में उसका वजूद जरूरी है। और फिर जहनी, या जहन में मौजू का वजूद जरूरी है। कजालिका, इसी तरह। कजालिका क्या माना? अगर मौजू के लिए महमूल का सबूत है, किस एतबार से? जहन के एतबार से। किस एतबार से? जहन के एतबार से, तो जहन में उसका वजूद जरूरी है। बात समझ में आ गई? ثم القضايا الحملية المعتبرة باعتبار وجود موضوعها لها ثلاثة أقسام، फिर वो कजाया हमलिया जो मोतबर हैं बेअतबारी वजूद मौजूहा, अपने मौजू के वजूद के एतबार से। फिर वो कजाया हमलिया जो अपने मौजू के वजूद के एतबार से मोतबर हैं उलूम के अंदर। लहा सलासत अक्सामिन, उसकी कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं। लिअन्न अल-हुक्म फीहा इम्मा अलल मौजू अल-मौजूद फिल खारिज मुहक्ककन, या तो उसके अंदर हुक्म होगा उस मौजू पर जो मौजूद है खारिज के अंदर। मुहक्ककन यानी बिलफेल है, यानी या तो उसमें फिर देखो या लिअन अल हुक्म फीहा, इसलिए क्योंकि उसके अंदर हुक्म जो लगाया जा रहा है, इम्मा अलल मौजू अल मौजूद फिल खारिज मुहक्कन, या तो उस मौजू पर है जो मौजूद है खारिज में बिल फेल, नहु कुल्लु इंसान इन हैवान उन, जैसे हर इंसान हैवान है, बिमाना इसका माना क्या है, कुल्लु इंसान इन हैवान उन, क्या माना, यानी इंसान का जो भी फर्द खारिज में मौजूद है उसके लिए हैवान होने का हुक्म साबित है, बिमाना बईमाना कि कुल्लो इंसान इन मौजूद इन फिल खारिजी, कि हर वो इंसान जो खारिज में मौजूद है, हैवान उन फिल खारिजी, वो खारिज में हैवान है, यानी उसके लिए हैवान का हुक्म है। तर्जमा समझ में आ रहा है, व इम्मा अल मौजू अल मौजूद फिल खारिज मुकद्दरन, या हुक्म होगा उस मौजू पर जो मौजूद है खारिज में मुकद्दरन, खारिज में मौजूद है मुकद्दर है यानी मुमकिन है, मुमकिन है, बात समझ में आ गई। मुकद्दर का वैसे माना है फर्ज किया हुआ, क्या
फर्ज किया,
कद्दर युकद्दर तकदीर का क्या माना है, फर्ज करना। मसलन देखो कजिय हकीकिया की बात करने लगे हैं, मैंने कहा कुल्लो इंसानिन हैवान उन, हर इंसान क्या है, हैवान, यहां इंसान के अफराद मुकद्दरा पर मैं हुक्म लगा रहा हूं, किस पर, यानी इंसान का कोई भी फर्द फर्ज करोगे हैवान उन, उसके लिए हैवान होना साबित होगा, बात समझ में आ रही, इंसान का कोई भी फर्द आप फर्ज करोगे उसके लिए हैवान वाला हुक्म जरूर होगा। कुल्लु इंसानिन हैवान, हर इंसान क्या है, हैवान, यानी आप इंसान का कोई भी फर्द फर्ज करोगे तो उसके लिए यह हैवान वाला हुक्म जरूर साबित होगा। तो यह किसके लिए हुक्म है, अफराद मुकद्दरा के लिए, किसके लिए,
अफराद मुकद्दरा के लिए।
भाई आप कहेंगे अभी आपने पहले हमें बताया था कि मुमकिनुल वजूद, जो खारिज में क्या हो मुमकिन, अब आप कह रहे हैं अफराद मुकद्दरा, भाई बात वही है, फर्ज आप मुमकिन को भी कर सकते हैं और नामुमकिन को भी, मुमकिन को भी फर्ज कर सकते हैं और नामुमकिन को भी फर्ज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर फर्ज करने, आगे आपको खुद भी बताएंगे, फर्ज करने से मुराद वो वाले वो हैं जो मुमकिन भी हों, जो मुमकिन ही नहीं है वो मुराद नहीं, वो यहां मोतबर अफराद को, बात समझ में आ रही है, किसकी बात चल रही है, कजिया हकीकिया में हुक्म किस पर होगा, अफराद मुकद्दरा, यानी वो अफराद जिनको क्या किया जाए फर्ज, भाई फर्ज तो मुमकिन भी होता है और नामुमकिन भी होता है, तो आगे आपको चलकर बताएंगे कि इसमें नामुमकिन वाले मोतबर नहीं, सिर्फ कौन से मोतबर हैं, मुमकिन है, तो मुमकिनुल वजूद ही आ गए, तो मुकद्दर से क्या मुराद हो गए, किन पर हुक्म है, अफराद मुकद्दरा पर, यानी क्या माना, जो मुमकिन है, जो मुमकिनुल वजूद है, नामुमकिन निकल गए, तो बात तो वही है, बस सिर्फ मुकद्दर वाले लफ्ज पे जरा जहन में आपके इश्काल आ सकता था। देखो फिर देखो जरा तर्जमा देखो, सुम्मल कजाया अल हमलियतुल मुतबरतु, इबारत मिल गई, बस सिर्फ तर्जमा में करूंगा, फिर वो कजाया हमलिया जो मुतबर हैं यानी उलूम के अंदर, वो अपने मौजू के वजूद के एतबार से उनकी तीन किस्में हैं, इसलिए क्योंकि हुक्म जो है उनके अंदर या तो उस मौजू पर लगाया जाएगा जो मौजूद होगा खारिज में मुहक्कन यानी बिलफेल, जैसे कुल्लो इंसानिन है, या तो उन पर हुक्म है, बई माना कि हर वो इंसान जो खारिज में मौजूद है, हैवान उन फिल खारिजी, वो खारिज में हैवान है, व इम्मा अलल मौजूइल मौजूदी फिल खारिजी मुकद्दरन, या हुक्म लगाया जाएगा उस मौजू पर जो खारिज में मौजूद है मुकद्दर होकर, खारिज में मौजूद है मुकद्दर होकर, यानी यूं कहो आसान लफ्जों में यूं कहो मुमकिन हो, जो खारिज में मुमकिन हो, नहु कुल्लो इंसान इन हैवान उन, जैसे कुल्लो इंसान इन हैवान उन, बिमाना बईमाना कि अन्न कुल्ला मा लव वुजिदा फिल खारिजी, हर ऐसी चीज लव वुजिदा फिल खारिजी कि अगर वो खारिज में पाई जाए, वकाना इंसानन और वो क्या हो, इंसान हो, फहुआ अला तकदीर वजूद ही हैवान उन, तो वह अपने वजूद की तकदीर पर हैवान भी जरूर होगी, हर ऐसी चीज जो खारिज में पाई जाए और वो क्या हो, इंसान हो, तो वो अपने वजूद की तकदीर पर हैवान जरूर होगी, यानी आप अगर किसी भी चीज को फर्ज करें खारिज में जो क्या हो, इंसान हो, तो उसके लिए हैवान होने का हुक्म भी आपको फर्ज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बात समझ में, यानी इंसान का जो फर्ज भी खारिज में हो वो क्या होगा, हैवान जरूर होगा। देखो बई माना अन्न कुल्ला मा लव वुजी दफिल खारिजी कि हर ऐसी चीज कि अगर वो खारिज में पाई जाए वकाना इंसान और वो क्या हो
इंसान
यानी आप उसको इंसान मानेंगे फहू आला तकदीरी वजूद ही तो वो अपने वजूद की तकदीर पर हैवान होगी यानी जैसे आपने उसका इंसान होना फर्ज किया है तो आपको उसके लिए हैवान भी मानना पड़ेगा। वहाद अल मौजूद उल मुकद्दर इन नमा भाई इन्होंने कहा फर्ज कर ले पीछे आया था ना मुकद्दर का लफ्ज आया था और मुकद्दर का क्या माना फर्ज किया जाए फर्ज तो मुमकिन भी हो सकता है और नामुमकिन भी हो सकता है और मैंने क्या बताया था कजिय हकीकिया में हुक्म उन अफराद पर होता है जो खारिज में मुमकिन उल वजूद होते हैं और इन्होंने तो मुकद्दर कह दिया मुकद्दर का माना तो फर्ज इसमें तो मुमकिन उल वजूद भी आ गए और मुमतने उल वजूद भी कुछ चीजें खारिज में मुमकिन है जैसे इंसान के अफराद या अनका के अफराद कुछ चीजें खारिज में मुमकिन ही नहीं है जैसे शरीके बारी ताला और लफ्ज क्या ले आइए मुकद्दर और मुकद्दर का क्या माना यानी फर्ज किया हुआ जिसके अफराद को आप क्या कर सकें फर्ज भाई फर्ज तो मुमकिन को भी कर सकते हैं और मुमतनिया को तो अब आगे जवाब देने लगे कहते हैं वहाद अल मौजूद उल मुकद्दर इन्नमा तबरूहु फिल अफरादिल मुमकिनती लल मुमतनियाती और ये मौजूद मुकद्दर इसका मनातिका एतबार करते हैं फिल अफरादिल मुमकिनती किसके अंदर सिर्फ अफराद मुमकिन यानी जिसके अफराद खारिज में मुमकिन है उनके अंदर यह मौजूद मुकद्दर का एतबार यानी सिर्फ अफराद मुमकिना का इसमें एतबार करते हैं लल मुमतनियाती मुमतनिया का एतबार नहीं करते का अफराद लाशय व शरीकिल बारी जैसे लाशय और शरीके बारी ताला जैसे लाशय ये खारिज में मुमकिन ही नहीं है फर्ज तो हम इसको भी कर सकते हैं और शरीके बारी ताला ये भी खारिज में मुमकिन ही नहीं फर्ज तो हम इसको भी कर सकते हैं तो कह रहे हैं कि भाई मुकद्दर से फर्ज करने से मुराद वो हैं जो मुमकिन उल वजूद हैं वो मोतबर हैं जो मुमतने उल वजूद हैं खारिज में वो मोतबर नहीं है भाई। व इम्मा अलल मौजू अल मौजूद फी ज़हनी या वो हुक्म लगाया जाएगा ऐसे मौजू पर जो मौजूद होगा जहन में जो क्या होगा मौजूद होगा जहन में का कौली का जैसे आपका यह कहना शरीक उल बारी मुमतनिया उन अल्लाह ताला का शरीक मुमतनिया है यानी मुमकिन ही नहीं है बीमाना बईमाना वही मैंने आपको बताया था कजिय जहनीय किसे कहते हैं जिसका मौजू क्या हो वजूद जहनी वजूद जहनी यानी ऐसे अफराद पर हुक्म है जो मुमकिन उल वजूद हैं कहां पर जहन में हकीकिया में ऐसे अफराद पर हुक्म था जो मुमकिन उल वजूद हैं खारिज में और कजिय जहनिया में ऐसे अफराद पर हुक्म है जो क्या है मुमकिन उल वजूद हैं कहां पर जहन में और फिर वो आम है बिल फेल हो या बिल फेल ना हो सिर्फ मुमकिन हो जैसे शरीके बारी ताला जहन में बिल फेल तो नहीं है लेकिन अगर आप फर्ज भी करोगे तो शरीकुल बारी मुमतनिउन इसके साथ ये इम्तिना वाला हुक्म भी आपको मानना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ये माना है बिमाना अन्न कुल्ला मा लव वुजिदा फिल आकली कि हर ऐसी चीज लव वुजिदा फिल आकली जो अकल में पाई जाए वयफ्रुजुहुल अक्लु शरीकल बारी और अकल उसको शरीकुल बारी फर्ज कर ले फहुआ मौसूफ उन फिर जहनी बिल इम्तनाई तो वो जहन में मौसूफ होगी किसके साथ इम्तना के साथ। तर्जमा समझ में आया कि हर ऐसी चीज जो अकल में पाई जाए और अकल उसको फर्ज कर ले कि ये शरीकुल बारी है तो जहन में उसको इम्तना के साथ भी क्या करना पड़ेगा मौसूफ। देखिए फिर तर्जमा देख लीजिए कौली का शरीकुल बारी मुमतने जैसे आपका कौल के अल्लाह का शरीक मुमतने है बीमान है बईमाना कि नकुल्ला मालव वुजिदा फिल अक्ली कि हर ऐसी चीज के अगर वो कि जो अकल में पाई जाए वयफ्रुजुहुल अक्लु शरीकल बारी और जिसे अकल शरीके बारी फर्ज कर ले हर ऐसी चीज जो अकल में पाई जाए और अकल उसे क्या फर्ज कर ले शरीकुल बारी फहुआ मौसूफ उन फिर जहनी बिल इम्तिना तो वो जहन में इम्तिना के साथ मौसूफ होगी वो यकीनी तौर पर इम्तिना के साथ जहन में मौसूफ होगी। वहादा इन्ना मातबरूह फिल मौजूआत अल्लती लैसत लहा अफरादुन मुमकिनतु तहक्कुक फिल खारिजी और कहते इसका एतबार किया है मनातिका ने किसका ये जो कजिया जहनिया है इसका एतबार किया है। फिल मौजूआत इल्लती उन मौजूआत में लैसत लहा अफराद उन मुमकिनतु तहक्कुक जिसके अफराद मुमकिनतु तहक्कुक यानी बिल फेल मुमकिन नहीं फिल खारिजी कहां पर
खारिज
में बात समझ में आ गई। मुमकिन उल अफराद हकीकिया में भी आया और मुमकिन उल अफराद जहनिया में भी आया लेकिन हकीकिया में मुमकिन उल अफराद से क्या मुराद जो खारिज में मुमकिन है और जहनिया के अंदर मुमकिन उल अफराद से क्या मुराद जो जहन में मुमकिन है खारिज में मुमकिन ही नहीं है। यह बात बयान कर रहे हैं कि वहादा इन नमातबरूह फिल मौजूआत इल्लती लैसत लहा अफराद उन मुमकिनतु तहक्कुक फिल खारिजी कि इसका एतबार किया है मंतिक वालों ने उन मौजूआत में लैसत लहा अफराद उनके जिसके ऐसे अफराद ना हो मुमकिनतु तहक्कुक फिल खारिजी जो खारिज में मुमकिन हो भाई जिनका मुमकिन यानी जिनका वजूद खारिज में मुमकिन हो। देखिए भाई आगे मतन देख लीजिए वकद युजअलु हर्फु सल्बि जुज़अन मिन जुज़इन फयुसम्मा मादूलतन व इल्ला फमुहस्सलतन। अब आगे आसान है भाई आगे आसान याद रखो हर्फ सल्ब जो है वो निस्बत के नफी के लिए आता है ज़ैदुन क़ायमुन ज़ैद खड़ा है और ज़ैदुन लैसा बिक़ायमिन ज़ैद खड़ा नहीं। तो ये जो हर्फ सल्ब आया ये निस्बत की नफी के लिए आया किसके लिए निस्बत की नफी के लिए आया लेकिन कभी कभार ऐसा करते हैं ये जो हर्फ सल्ब है इसको मौजू का जुज बना देते हैं कभी इसको महमूल का जुज बना देते हैं और कभी दोनों का जुज बना देते हैं। तो हर्फ सल्ब अगर मौजू का या महमूल का या दोनों का जुज हो तो इसको कजिया मादूला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कजिया मादूला। अदल का माना है फेरना फेरना ये कजिया भी ये इसको भी अपनी असल हालत से फेरा गया है अपनी असल हालत से फेरा गया है हटाया गया है। असल में तो क्या है हर्फ सल्ब किसकी नफी के लिए आता है निस्बत की नफी के लिए आता है जैदुन कायमुन जैद खड़ा है जैदुन लैसा बिकायमिन जैद खड़ा नहीं उसी कियाम की जैद से नफी की जा रही है। लेकिन कभी कभी यह हर्फ सल्ब मौजू का जुज बन जाता है कभी यह हर्फ सल्ब महमूल का जुज बनता है और कभी दोनों का जुज बनता है। तो ऐसा कजिया जिसमें हर्फ सल्ब मौजू या महमूल या दोनों का जुज हो उसको कजिया मादूला कहते हैं। क्या कहते हैं कजिया मादूला। मादूला क्यों कहते हैं वजह भी मैंने बता दी क्योंकि अदल का क्या माना है फेरना हटाना अपने असल तरीके से एक चीज को हटा देना फेर देना। यहां पर भी हर्फ सल्ब उसको तो आना चाहिए था किसके लिए निस्बत की नफी के लिए आपने उसको असल इस्तेमाल से हटाकर मौजू का जुज बना दिया या महमूल का जुज बना दिया या दोनों का जुज तो इसके असल इस्तेमाल से आपने इसको फेर दिया इसको हटा दिया इसलिए इसको क्या कहते हैं कजिया मादूला यानी जो आम कजियों का तरीका है उससे इसको फेर दिया गया है हटा दिया गया है। फिर ये तीन किस्म पर है अगर हर्फ सल्ब मौजू का जुज है तो इसको मादूलतुल मौजू कहेंगे अगर हर्फ सल्ब महमूल का जुज है तो इसको मादूलतुल महमूल कहेंगे और अगर हर्फ सल्ब दोनों का जुज है तो इसको मादूलतुल तरफैन कहेंगे यानी दोनों तरफ इसकी मादूल है। हर्फ सल्ब अगर मौजू का जुज हो तो क्या कहेंगे मादूलतुल मौजू अगर हर्फ सल्ब महमूल का जुज हो तो क्या कहेंगे मादूलतुल महमूल और अगर दोनों का जुज हो तो मादूलतुल तरफैन। तो कहते हैं वकद युजअलु हर्फु सल्बि जुज़अन और कभी कभार हर्फ सल्ब को जुज बना दिया जाता है मीन जुज इन कजिए के जुज का हर्फ सल्ब को जुज का जुज बना दिया जाता है। तर्जमा समझ में आ रहा है वकद युजअलु भाई देखो ना मौजू भी कजिए का जुज है महमूल भी कजिए का जुज है तो इस हर्फ सल्ब को जुज का जुज बना दिया गया बात समझ में आ वकद युजअलु हर्फु सल्बि जुज़अन मिन जुज़इन और कभी कभार हर्फ सल्ब को जुज का जुज बना दिया जाता है फयुसम्मा मादूलतन तो उस कजिए को मादूला कहते हैं व इल्ला और अगर ऐसा ना हो फमुहस्सलतन तो फिर इसको मुहस्सला कहते हैं यानी वो कजिया जिसमें हर्फ सल्ब ना मौजू का जुज है और ना महमूल का जुज है उसको कजिया मुहस्सला कहते हैं। जैदुन कायमुन हर्फ सल्ब मौजू का जुज है जैद के साथ कोई हर्फ सल्ब है कायमुन के साथ कोई हर्फ सल्ब है नहीं, तो ये कजिया मुहस्सला है। या हर्फ सल्ब ले आओ लेकिन निस्बत की नफी के लिए लाओ, मौजू महमूल के साथ ना जोड़ो। जैदुन लैसा बिकायमिन, जी जैदुन के साथ कोई हर्फ सल्ब अलग जुड़ा हुआ है नहीं, कायमुन के साथ कोई हर्फ सल्ब अलग उसका जुज है नहीं, लैसा आ रहा है लेकिन यहां वो निस्बत की नफी के लिए है, मौजू या महमूल का जुज नहीं, तो इसको भी कजिया मुहस्सला कहेंगे। कजिया मुहस्सला किसे कहते हैं? जिसमें हर्फ सल्ब ना मौजू का जुज ना महमूल का जुज, उसको कजिया मुहस्सला। फिर चाहे हर्फ सल्ब हो उसमें या ना हो, कजिया में हर्फ सल्ब हो सकता है, हो सकता है ना हो, लेकिन मौजू या महमूल का जुज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ये माना है वह इल्ला फ मुहस्सलतन, और अगर ऐसा ना हो यानी हर्फ सल्ब किसी का जुज ना हो तो इसको मुहस्सला कहते हैं, यानी ना मौजू का जुज है और ना महमूल का जुज है, तो फिर इसको कजिया मुहस्सला कहते हैं। और एक और बात याद रखना कि इन तीन किस्मों में से मंतिक में सिर्फ मादूलतुल महमूल मोतबर है। मादूला कितनी किस्म पर? तीन, या तो मादूलतुल मौजू या मादूलतुल महमूल या मादूलतुल तरफेन, इनमें से सिर्फ जो मादूलतुल महमूल है वो इस मंतिक में मोतबर है, बाकी दोनों मोतबर नहीं है। अब आगे देखिए शरा पर भाई, कौलुहू हर्फ सल्बी का ला व लैसा वगैरहिमा, जैसे ला लैसा और इनके अलावा हैं, मिम्मा युशारिकु हुमा फी माना सल्बी, यानी कि वो जो इसके साथ शरीक हैं सल्ब के माना में, जो इन दोनों के साथ क्या हैं? शरीक हैं सल्ब के माना में। तवज्जो है, इन्होंने क्या कहा? मतन में हर्फ सल्ब आया था, हर्फ सल्ब मौजू या महमूल का जुज होगा, तो वो बतलाने लगे हर्फ सल्ब से क्या मुराद है। कहते हैं कला, जैसे कि ला है, व लैसा और लैसा है, व गैरिहिमा और इनके अलावा। भाई इनके अलावा क्या माना? कहते हैं मिम्मा युशारिकु हुमा फी मानन सल्बी, यानी वो जो शरीक हैं इन दोनों के साथ सल्ब के माना में, नफी के मान, जैसे ला और लैसा नफी के लिए आते हैं, इनके साथ और जो भी लफ्ज नफी में इनके साथ शरीक होगा वो सब किस में दाखिल हो गए? हर्फ सल्ब में, वो सब हर्फ सल्ब हैं। कौलुहुम मिन जुज इन, मतन में क्या आया था कि कभी कभार हर्फ सल्ब को जुज बनाया जाता है, मिन जुज इन, किसका? जुज का। तो इससे क्या मुराद है? कहते मिन जुसिन आई मिनल मौजू फकत और मिनल महमूल फकत और मिन किले हिमा, यानी सिर्फ मौजू का जुज बनाते हैं और मिनल महमूल फकत, या सिर्फ महमूल का जुज बनाते हैं और मिन किले हिमा, या दोनों का जुज बनाते हैं। फल कजिया तो अल अवली तो सम्मा मादूलत अल मौजूई, तो कजिया पहली सूरत में जबकि हर्फ सल्ब किसका जुज हो? मौजू का, तो उस सूरत में तो सम्मा मादूलतल मौजू, उसको क्या कहते हैं? मादूलतुल मौजू। व अलसानी, और दूसरी सूरत में जब हर्फ सल्ब सिर्फ महमूल का जुज हो तो उसको मादूलतल महमूल, उसको क्या कहते हैं? मादूलतल महमूल कहते हैं। व अलसालिसी, और तीसरी सूरत में जब हर्फ सल्ब दोनों का जुज है तो उसको मादूलत तरफेन, क्या कहते हैं? ऐ तो सम्मा मादूलत तरफेन, उसको मादूलत तरफेन कहते हैं। मिसालें भी कर लें, मिसालें मादूलतुल मौजू की मिसाल, मादूलतुल मौजू का, देखो मौजू के साथ मैं हर्फ सल्ब जोड़ दूंगा, जैसे कुल्लु ला हयिन जमादुन, कुल्लु ला हयिन जमादुन, हयुन का माना जिंदा, ला हय का माना गैर जिंदा, जो जिंदा ना हो, और जमाद, जमाद बेजान को कहते हैं, किसको? देखो ये चीजें जो है ना दुनिया में ये तीन तरह पर हैं, या हैवानात हैं, या नबातात हैं, या जमादात हैं। हैवानात आप जानते हैं, और नबातात ये पौधों को कहते हैं, और जमादात बेजान चीजें, ये पत्थर, मिट्टी, पहाड़, ये सब क्या हैं? जमादात हैं। नबातात क्या हैं? ये दरख्त और पौधे वगैरह। और हैवानात क्या हैं? इंसान, गाय, बैल, बकरी वगैरह। तो चीजें कितनी किस्म पर हैं? ये तीन, या हैवानात हैं, या नबातात हैं, या जमादात। तो जमादात यानी बेजान, बेजान। तो मिसाल कम कर रहे थे मादूलतुल मौजू की। मादूलतुल मौजू की क्या मिसाल है? कुल्लो लाहयिन जमादुन। लाहय लाहय भाई हयुन का यह मौजू है, इसी के साथ मैंने ला जोड़ दिया और मौजू लाहय को बना दिया। कुल्लो लाहयिन जमादुन, हर गैर जिंदा जो है जमादुन वो बेजान है। हर लाहय क्या है?
बेजान।
क्या मैं कह सकता हूं हर जिंदा बेजान है?
नहीं, नहीं,
नहीं। बल्कि गैर जिंदा क्या है? बेजान। तो मुझे कहना पड़ेगा कुल्लु लाहयिन जमादुन, वो क्या है? जमाद। तो हर्फ सल्ब किसका जूस?
मौजू
का। अब इसको जरा उलट दो, कुल्लु जमादिन लाहयिन, कुल्लु जमादिन लाहयिन, हर बेजान वो क्या है? लाहय है, गैर जिंदा है जी। अब लफ्जों पे नजर है, कुल्लो जमादिन, जमात के साथ कोई ला लैसा है
नहीं,
नहीं। और महमूल क्या है? ला है, उसके साथ ला जुड़ा हुआ है, तो ये मादूलतुल महमूल हुआ। कुल्लो जमादिन ला है, और दोनों के साथ ला जोड़ दो, कुल्लु ला हयिन ला आलिमुन, हर ला है ला आलिम है, हर लाहय ला आलिम है, हर बेजान चीज ला आलिम है, यानी आलिम नहीं है। मिसालें समझ में आ गई? फिर दोहराओ, मादूलतुल मौजू की मिसाल कोई अपनी तरफ से बना लो, चाहे वही जिक्र कर दो, कुल्लो लाहयिन जमादुन, कुल्लो लाहयिन जमादुन। और मादूलतुल महमूल की मिसाल कुल्लो जमादिन लाहयुन, कुल्लु जमादिन ला हय्युन। और मादूलतु तरफेन कुल्लु ला हय्येन ला आलिमुन, कुल्लु ला हय्येन ला आलिमुन। आगे देखिए शरा में, कौलुहु मादूलतन, कहते हैं इसको मादूला क्यों कहते हैं? वजह अब जिक्र करने लगे हैं, कहते हैं लिअन्न हर्फ सल्ब मौज़ूउन लिसल्ब निस्बती। भाई मैंने वजह बयान कर दी, क्या वजह? मादूला क्यों कहते हैं? आदल का माना फेरना हटाना, चूंकि इस कजिए को भी आम कजियों से की तरीके से हटाया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मादूला। दरअसल इस कजिए को पूरे को नहीं हटाया गया, सिर्फ हर्फ सल्ब को अपने तरीके से हटाया गया है। हर्फ सल्ब आता है निस्बत की नफी के लिए, किसके लिए? और यहां पर हर्फ सल्ब को किसके साथ जोड़ दिया? किसका जुज बना दिया? मौजू का या महमूल का या दोनों का। तो हर्फ सल्ब को अपने जो आम इस्तेमाल का तरीका है उससे हटा दिया गया, फेर दिया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मादूला। तो मादूला असल में पूरा कजिया नहीं है, हर्फ सल्ब है। क्या है? हर्फ सल्ब है, लेकिन उस हर्फ सल्ब की वजह से पूरे कजिए को ही मादूला कह देते हैं। इसको कहते हैं तस्मियतुल कुल बिस्मिल जुज, जुज की वजह से सारे को ही वही नाम दे देना। मादूल पूरा कजिया है या सिर्फ हर्फ सल्ब है? हर्फ सल्ब है, उसको अपने तरीके से हटाया गया है। उसको तो किस लिए लाते हैं? निस्बत की नफी के लिए, न कि इसलिए कि उसको मौजू या महमूल के साथ जोड़ा जाए। तो वो निस्बत की नफी के लिए आता है, लेकिन उसको अपने आम तरीके से हटा दिया गया। तो हर्फ सल्ब क्या हुआ? मादूल हुआ। क्या हुआ? मादूल। लेकिन इस एक हिस्से की वजह से सारे कजिए को ही क्या कह दिया गया? मादूला। यानी जुज की वजह से कुल का नाम ही मादूला रख दिया। कजिया तो सारा मादूला नहीं था, इसका एक जुज क्या था? हर्फ सल्ब, वो मादूल था, लेकिन सारे कजिए को ही क्या कह दिया? मादूला। इसको क्या कहते हैं? तस्मियतुल कुल बेस्मिल जुज, कुल को जुज की वजह से कोई नाम दे देना। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं कौलुहु मादूलतन लिअन्न हर्फ सल्ब मौजूउन लिसल्ब निस्बति, इसलिए क्योंकि हर्फ सल्ब उसको वजा किया गया है लिसल्ब निस्बति, किस लिए? निस्बत की नफी के लिए। फइदस्तुमिला ला फी हादल माना काना मादूलन अन मानाहुल असली। फइदस्तुमिला ला फी हादल माना, फिर जब ला को इस्तेमाल कर लिया गया इस माना के अंदर, किस माना में? यानी मौजू या महमूल का जुज बना दिया गया, तो कान मादूलन अन मानाहुल असली, तो ये फेरा हुआ है अन मानाहुल असली अपने असली माना से। फसुमियतिल कजियतुल्लती हादल हरफु जुज उम्मीन जुज अहा मादूलतन, बस नाम रखा गया उस कजिया, वो कजिया कि ये हर्फ जुज है उसके दो जुजों में से किसी का, उसके जो दो जुज हैं यानी मौजू और महमूल उनमें से किसी का जो किसी का जुज है ये हर्फ, तो मादूलतन उसका क्या नाम दिया गया मादूला का। तस्मियतन लिल कुल बिस्मिल जुज ई, नाम देते हुए कुल को जुज का जुज के नाम के साथ, यानी यूं कहें कुल को मौसूम करते हुए जुज के इसम से, कुल को मौसूम किया किसके इसम के साथ जुज। तर्जमा समझ में आया। फसुमियतिल कजियतुल्लती हादल हर्फु जुज उम्मीन जुज ऐहा मादूलतन, बस नाम रखा गया उस कजिए का कि जिसमें ये वाला हर्फ यानी हर्फ सल्ब जो है वो जुज है मिन जुज ऐहा उसके दो जुजों, कजिए के दो जुजों में से किसी का वो जुज है, तो उस कजिए को का नाम रखा गया मादूलतन। क्या नाम रखा गया मादूला। तस्मियतन लिल कुल बिस्मिल जुज ई, नाम रखते हुए कुल का जुज के नाम के साथ। वल कजियतु ला यकूनु हर्फु सल्ब जुज अमीन तरफैहा तुसम्मा मुहस्सलतन, और वो कजिया कि जिसके अंदर हर्फ सल्ब जुज न हो उसकी तरफैन का यानी मौजू या महमूल का, तुसम्मा मुहस्सलतन उसको क्या कहते हैं मुहस्सला कहते हैं। वो कजिया जिसके अंदर हर्फ सल्ब न मौजू का जुज हो और ना महमूल का जुज हो उसको मुहस्सला कहते हैं। मुहस्सला हासिल से है, किससे हासिल, यानी उस कजिए के दो जुज हैं और दोनों हासिल हैं यानी वजूदी हैं, कोई भी बनफी नहीं। पहले तो क्या था ला हाई, हाई था या ला हाई था, ला हाई की नफी हो रही थी, और आलिम था या ला आलिम था, ला आलिम, वहां देखो आलिम की नफी है, तो दोनों में से कोई एक भी हासिल नहीं है, दोनों मनफी हैं। लेकिन जब हर्फे सल्ब ना मौजू का जुज तो मौजू भी हासिल, और हर्फ सल्ब ना महमूल का जुज तो हर तो महमूल भी क्या है हासिल। जैदुन कायमुन, जैद भी हासिल यानी उसका भी वो भी वजूदी चीज है, और कायमुन वो भी क्या है वजूदी है, किसी के साथ ला जुड़ा हुआ है, ला होता तो फिर आदमी बन जाता, वो आदमी चीज होती वजूदी ना होती, लेकिन जैदुन इसके साथ भी ला नहीं जुड़ा हुआ, कायमुन के साथ भी ला नहीं जुड़ा हुआ, मालूम हुआ जैद भी वजूदी यानी मुहस्सल है और कायमुन भी मुहस्सल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं कजिया मुहस्सला कहते हैं। फिर यह मुहस्सला ये मुजीबा भी हो सकता है सालिबा भी हो सकता है, जैदुन कायमुन ये भी कजिया मुहस्सला, और जैदुन लैसा भी कायमीन ये भी कजिया मुहस्सला है, क्योंकि हर्फ सल्ब ना मौजू का जुज है और ना महमूल का। जैदुन लैसा भी कायमीन, जैद के साथ ला जुड़ा हुआ है नहीं, और कायमुन के साथ ला जुड़ा है नहीं। लैसा नफी के लिए बेशक आ रहा है लेकिन वो अपने इस्तेमाल के मुताबिक आ रहा है, लैसा निस्बत की नफी के लिए है और उसको वजह भी किस लिए किया गया है निस्बत की नफी के लिए, तो ये कजिया मुहस्सला कहलाएगा चाहे मुजिबा हो चाहे सालिबा। तो कजिया मुहस्सला किसे कहते हैं जिसमें हर्फ सल्ब मौजू या महमूल किसी का जुज ना हो, फिर खुद चाहे वो कजिया मुजिबा हो चाहे सालिबा। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर इसमें एक और छोटी सी बात याद रखना, ये जो कजिया मुहस्सला सालिबा हो, मुहस्सला कजिया मुहस्सला सालिबा की कोई मिसाल लाओ, कोई भी मिसाल ले आओ जी। कुल्लो इंसान इन हैवानुन, ये क्या है कुल्लो इंसान इन हैवानुन, सालिबा लाओ भाई सालिबा ले आओ। बाजुल हैवानी लैसा भी इंसानी, बाजुल हैवानी लैसा भी इंसानी, बास हैवान इंसान नहीं है। ये मुहस्सला है या मादूला है? मुहस्सला है, क्योंकि बाजुल हैवान जो है उसके साथ भी ला नहीं जुड़ा हुआ, और इंसान जो महमूल है उसके साथ भी ला नहीं, तो यह मुहस्सला है, लेकिन मुहस्सला सालिबा है। बाजुल हैवानी लैसा भी इंसानीन, और ये जो सालिबा मुहस्सला है इसको कजिया बसीता भी कहते हैं, कजिया बसीता भी कहते हैं, ये भी कहीं नाम आ जाए तो आपने याद रखना है, इसको कजिया बसीता कहते हैं। क्या कहते हैं? बसीता। बसीत किसको कहते हैं जिसका कोई जुज ना हो, बसीत किसे कहते हैं? जिसका कोई जुज नहीं। देखो भाई, बाजुल हैवानी लैसा बि इंसानिन, ये जो लैसा है क्या ये मौजू का जुज है?
नहीं।
और क्या ये महमूल का जुज है? नहीं, महमूल का भी जुज नहीं। तो ये इस वक्त बसीत है, ये किसी का जुज नहीं, ना इसका कोई जुज, ये क्या है? बसीत। तो कजिया मुहसला सालिबा जो होता है उसको बसीता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर्फ सल्ब वहां किसी का जुज नहीं, जब किसी का जुज नहीं तो हर्फ सल्ब क्या है? बसीत हुआ, बगैर जुज के हो गया। बात समझ में आ गई, इसलिए उसको बसीता कहते हैं। हासिल कलाम फिर सुन लें, आज हमने कजिया खारिजिया, कजिया हकीकिया और कजिया जहनिया के बारे में पढ़ा। इन्होंने आपको बतलाया कि कजिया खारिजिया वो है जिसका मौजू वजूद मुहक्कक हो, यानी वो अफराद जो बिलफेल खारिज में मौजूद हैं, जैसे कुल्लो इंसानिन हैवानुन, मैं वो इंसान के जो खारिज में अफराद हैं उन पर हुक्म लगा रहा हूं कि वो सारे क्या हैं? हैवान हैं। और अगर कजिए का मौजू वजूद मुकद्दर हो तो उसको कजिया हकीकिया कहते हैं, यानी हुक्म उन अफराद पर हो जो खारिज में मुमकिन है, जैसे कुल्लो इंसानिन हैवान, हर इंसान क्या है? हैवान। तो यहां इंसान के जो खारिज में अफराद हैं उन पर हुक्म नहीं, बल्कि इंसान के उन अफराद पर हुक्म है जो मुमकिनुल वजूद हैं। क्या है? तो इंसान पर हुक्म है और इंसान के अफराद क्या है? खारिज में मुमकिन है, बल्कि मुमकिन तो छोड़ो, बिलफेल भी खारिज में मौजूद हैं, लेकिन बिलफेल हो या ना हो उससे कोई असर नहीं पड़ता। हां, अफराद खारिज में क्या होने चाहिए? मुमकिनुल वजूद, तो उसको कजिया हकीकिया कहते हैं। और अगर अफराद सिर्फ जहन में हैं, यानी अगर कजिया का मौजू वजूद जहनी है तो फिर उसको कजिया जहनिया कहते हैं, और इसमें भी इसके मौजू के अफराद वो भी मुमकिनुल वजूद होते हैं, लेकिन कहां पर? जहन में, खारिज में मुमकिन नहीं, खारिज में नहीं। और उसके बाद आपने कजिया मादूला के बारे में पढ़ा। कजिया मादूला यानी वो कजिया कि जिसमें हर्फ सल्ब मौजू का या महमूल का या दोनों का जुज हो, उसको कजिया मादूला कहते हैं। अगर हर्फ सल्ब मौजू का जुज हो तो इसको क्या कहेंगे? मादूलतुल मौजू। अगर हर्फ सल्ब महमूल का जुज हो तो क्या कहेंगे? मादूलतुल महमूल। और अगर हर्फ सल्ब दोनों का जुज हो तो इसको मादूलतुल तरफेन कहेंगे। और इसको मादूला इसलिए कहते हैं क्योंकि मादूला का माना फेरा हुआ, क्योंकि यह आम कजियों के तरीके से फेरा गया है। आम कजियों में तो हर्फ सल्ब मौजू या महमूल का जुज नहीं होता, लेकिन इसके अंदर है। और असल में इसके अंदर हर्फ सल्ब जो है वो मादूल है। हर्फ सल्ब निस्बत की नफी के लिए आता है, लेकिन यहां उसको किसके साथ जोड़ दिया गया? मौजू या महमूल या दोनों के साथ। तो हर्फ सल्ब वो है वो मादूल है, लेकिन एक जुज जब मादूल हुआ तो पूरे कजिए को ही क्या नाम दे दिया? पूरे कजिए को ही मादूला कह दिया गया। और अगर हर्फ सल्ब मौजू या महमूल का जुज ना हो तो उसको कजिया मुहसला कहते हैं। मुहसला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके दोनों जुज क्या हैं? हासिल हैं, यानी वजूदी हैं, किसी के साथ भी हर्फ सल्ब जुड़ा हुआ नहीं। और फिर ये जो मुहसला है ये मुजिबा भी हो सकता है और सालिबा भी। बस इसमें हर्फ सल्ब ना मौजू का जुज होना चाहिए और ना महमूल का जुज होना चाहिए। और मैंने यह भी बताया कि इनमें से सिर्फ मादूलतुल महमूल जो है सिर्फ वो मंतिक के अंदर मोतबर है, मादूलतुल महमूल, बाकी मादूलतुल मौजू और मादूलतुल तरफेन वो मंतिक में मोतबर नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।